नमस्कार भारत, आज 18 दिसंबर दिन रविवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। पेंटागन ने कहा चीन जब्त ड्रोन लौटाने पर हुआ सहमत। दक्षिण चीन सागर में समुद्री ड्रोन को लेकर अमेरिका और चीन के बीच छिड़ गया था विवाद। सीरिया के अलेपो में फंसे लोगों को निकालने के लिए नए समझौते की खबर। मिलेगा बिहार के इकलौते महिला बैंड के सदस्यों से जो आत्मविश्वास की एक नई मिसाल बनकर उभरी हैं।
अपना पति से ज्यादा कमाते हैं, अपना मनमानी खर्चा करते हैं, अच्छा कपड़ा लेते हैं, अच्छा लड़कन के पढ़ाइयों में भी खर्चा करते हैं, किताब भी ला के देते हैं।
जूनियर हॉकी विश्व कप में आज बेल्जियम से भारत का मुकाबला। 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास रचने का मौका।
मेरे हिसाब से ये जो टीम की सबसे अच्छी खूबी है कि हम एक इंडिविजुअल पे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट या उसको तजव्वुर नहीं देते, हम पूरी टीम को देते हैं।
होगी उर्दू प्रेस और फिल्म समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमरीका के मुताबिक चीन उसका समुद्री ड्रोन लौटाने के लिए सहमत हो गया है। चीन ने गुरुवार को दक्षिण चीन सागर में अमरीका के ड्रोन को जब्त कर लिया था। इसे लेकर अमेरिका ने चीन के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर चीन पर चोरी का आरोप भी लगाया था। इसके बाद चीन ने कहा था कि अमेरिका मामले को तूल दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन वैध तरीके से आंकड़े जुटा रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश के सबसे बड़े नोट को बंद करने का फैसला जनवरी तक के लिए टाल दिया है। 100 बोलिवर नोट को बंद करने के फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। नोट बंद करने के ऐलान के बाद लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई थीं। सरकार का कहना था कि तस्करी पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी जरूरी है। कई लोग नोट बदलने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे थे। इसका असर व्यापार पर भी हुआ था। यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टुस्क ने पोलैंड की सरकार से संविधान का सम्मान करने को कहा है। पोलैंड की सरकार ने संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए सीमित संख्या में पत्रकारों को अनुमति देने की योजना बनाई है। इसका काफी विरोध हो रहा है। डोनाल्ड टुस्क ने कहा,
Miejmy świadomość, że pytanie o to,
इस सवाल को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है कि क्या पोलैंड में आजादी का यूरोपीय स्वरूप बचा रहेगा। ये विचारधारा के सिद्धांत का भी सवाल है। ये सवाल हमारे भविष्य, अस्तित्व, सुरक्षा और हमारे बचे रहने से जुड़ा है। आजादी की भावना को खारिज करना और लोगों की मर्जी को अनदेखा करने से पोलैंड की पटकथा का अगला अध्याय लिखा जाएगा। इतिहास भी हमें इस बारे में आगाह करता है। ये थे डोनाल्ड टुस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से मिली खबरों के मुताबिक पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नए समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। रिपोर्टों के मुताबिक समझौते के तहत विद्रोहियों की घेरेबंदी वाले शहरों से फंसे लोगों को भी निकालने की अनुमति दी जाएगी। गुरुवार को पूर्वी अलेप्पो से करीब 6,000 लोग बाहर आए थे, लेकिन शुक्रवार को ये प्रक्रिया थम गई थी। सरकारी पक्ष ने विद्रोहियों पर समझौते की शर्त नहीं मानने का आरोप लगाया था। अमरीकी डॉक्टर हेनरी हेमलिक का निधन हो गया है। वो 96 साल के थे। डॉक्टर हेनरी ने ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसके जरिए दम घुटने के कई पीड़ितों की जान बचाई गई थी। इस तकनीक को हेमलिक मैनूवर का नाम दिया गया था। ये प्राथमिक उपचार का हिस्सा बन गई थी। डॉक्टर हेनरी ने बीबीसी को बताया था कि उन्होंने इसी साल पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था, हम खाना खा रहे थे। मैं खाते वक्त अपने साथ बैठी महिला के साथ बातचीत कर रहा था, तभी मैंने देखा कि उनका दम घुट रहा है, उनके जिस्म का रंग बदल रहा है, मुंह खुल गया था और होंठ बाहर लटक रहे थे। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि उनका दम घुट रहा है। मैंने हेमलिक मनुवर को इजाद किया था, इसे कई लोगों को सिखाया था, लेकिन पहले कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और उनकी पसलियों पर प्रहार किया, दूसरे हाथ से पेट को मसला और 3 बार ऐसा करने से हड्डी के साथ मांस का टुकड़ा उनके मुंह से बाहर आया और वो दुरुस्त हो गई। ये थे डॉक्टर हेनरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। वो जनरल दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे। वहीं एयर मार्शल बीएस धनोआ भारतीय वायुसेना की कमान संभालेंगे। वो मौजूदा वायुसेना प्रमुख अरूप राहा की जगह लेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव जैन आईबी के प्रमुख होंगे और अनिल धस्माना रॉकी कमान संभालेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी .com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। एक समुद्री ड्रोन को लेकर चीन और अमेरिका के बीच गहराया विवाद अब थोड़ा संभलता सा नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका दोनों ने ही कहा है कि चीनी नौसेना ने जिस खोजी ड्रोन को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पास जब्त किया था उसे अमेरिका को लौटाने पर सहमति बन गई है। इस घटना के बाद से दोनों ही तरफ से भड़काऊ बयान दिए गए थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ड्रोन चुराने का आरोप लगाया था तो चीन ने कहा था कि अमेरिका इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है। खबर की पूरी जानकारी और पेंटागन के ताजा बयान को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात की।
देखिए, मामला शुरू हुआ बृहस्पतिवार को जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के अंदर से पानी के अंदर जानकारी इकट्ठा करने वाले एक अमेरिकी ड्रोन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के अनुसार चीनी नौसेना ने उनकी आंखों के सामने ऐसा किया और कुछ लोगों ने तो इसे दिन दहाड़े चोरी का नाम दिया। अमेरिका की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि चीन ने अमेरिका का रिसर्च ड्रोन चुरा लिया है, ये एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई है। आज पेंटागन ने बयान जारी करके कहा है कि मामला सुलझ गया है और चीन ये ड्रोन लौटा देगा। कब, कहां और कैसे, इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। चीन की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि अमेरिका ने इसे बेवजह तूल दिया है और इससे समस्या को सुलझाने में और मुश्किलें ही पैदा होती हैं। उन्होंने ड्रोन पर कब्जे के बारे में कहा कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून ड्रोन की गतिविधियों पर कुछ भी नहीं कहता। साथ ही उन्होंने साउथ चाइना सी के पास अमेरिकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना भी की है, लेकिन फिलहाल तनाव के बावजूद लगता है कि मामला काबू में आ गया है।
ब्रजेश, ये बताइए कि अमेरिका में ये जो पूरा ताजा विवाद छिड़ा था इसको कैसे देखा जा रहा है, लोगों की और तमाम अखबारों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है?
देखिए, कुछ लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक आक्रामक चीनी नीति की तरह देख रहे हैं, तो कुछ उसे एक तरह की आप कह लें कि जोर आजमाइश की तरह देख रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में चीन की लगातार आलोचना की थी और दो हफ्ते पहले उन्होंने लगभग तीन दशक से चली आ रही नीति का उल्लंघन करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर ली, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जिसे वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई या तो ट्रंप को संदेश देने के लिए था कि चीन को कमजोर ना आके, या फिर ये जताने के लिए कि साउथ चाइना सी जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है तो वहां अमेरिका दखलंदाजी नहीं करे। चीन के कुछ पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रोन के जरिए अमेरिका खुफिया जानकारी वहां पर जुटाता रहा है, जबकि अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ये एक वैज्ञानिक शोध के लिए था। ट्रंप और कई रिपब्लिकन नेता कहते रहे हैं कि चीन खुलकर इस तरह की कार्रवाई इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ओबामा के शासन में अमेरिका को कमजोर होता देखा गया है और ट्रंप खुद को जैसा कि आप जानते हैं एक लौह पुरुष की तरह, एक टफ मैन की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन और अमेरिका के संबंधों के लिए एक नई चुनौती आप कह सकते हैं कि पेश कर रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि जनवरी के बाद हालात क्या होते हैं, पूरी दुनिया की आंखें इनकी नीतियों पर होंगी क्योंकि जैसा राष्ट्रपति ओबामा ने कल अपने बयान में कहा था कि चीन और अमेरिका के रिश्तों में जो टकराहट होती है तो उसका पूरी दुनिया पर असर होगा और इसीलिए इसे बेहद संजीदगी से देखने की जरूरत है।
वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। सीरिया से मिली खबरों के मुताबिक अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान दोबारा शुरू करने के लिए नया समझौता हो गया है। पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुक्रवार को थम गया था। गुरुवार को करीब 6,000 लोगों को बाहर निकाला गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि फंसे लोगों को सहायता की सख्त जरूरत है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
पूर्वी अलेप्पो में फंसे सैकड़ों लोग मुश्किलों में घिरे शहर से बाहर निकलने के लिए अपनी बारी का बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी अलेप्पो से गुरुवार को लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन शुक्रवार को सरकारी पक्ष ने विद्रोहियों पर समझौते की शर्तें नहीं मानने का आरोप लगाया और ये प्रक्रिया थम गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार और विद्रोहियों के बीच नया समझौता हो गया है। इसके तहत सीरिया के ऐसे तमाम शहर जहां घेरेबंदी की गई है वहां से लोगों को निकालने की इजाजत दी जाएगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रक्रिया के दोबारा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के प्रवक्ता इवान वॉटसन ने जेनेवा में बीबीसी को बताया,
We've heard some signals that we hope will turn into real concrete
action. हमें कुछ संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि उम्मीदें वास्तविकता में तब्दील हो सकती हैं। हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि पूर्वी अलेप्पो के लोगों को मदद की बेहद जरूरत है। ये थे इवान वॉटसन के शब्द। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मैथ्यू मॉरिस ने पूर्वी अलेप्पो में बीते हफ्ते एक ऐसी इमारत को खाली कराया था जो बुजुर्ग लोगों का घर थी। उन्होंने बताया,
there were people there with physical disabilities, mental health needs, the elderly, and what we found was
वहाँ तीन ऐसे विकलांग बुजुर्ग थे जिन्हें मानसिक उपचार की जरूरत थी। उनकी स्थिति चौंकाने वाली थी। हमें पास ही अनाथ बच्चों का एक समूह मिला। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पूर्वी अलेप्पो में मदद की बहुत जरूरत है। जो लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, उन्हें खाना, पानी और दवाओं की जरूरत है। ये थे मैथ्यू मॉरिस के शब्द। पूर्वी अलेप्पो पर बीते चार साल से विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन अब बड़ा हिस्सा सरकारी सेना के अधिकार में है। सरकार और विद्रोहियों के बीच हुए समझौते के तहत गुरुवार को पूर्वी अलेप्पो से करीब 6,000 लोग बाहर गए थे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहर जाने का इंतजार कर रहे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बीमार और घायल लोग हैं। सर्द मौसम के बीच वो नए समझौते के अमल के इंतजार में हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे वात्सल्य राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने हाल ही में घोषणा की थी कि राजनीतिक दलों के खातों में जमा होने वाले धन को छूट मिलेगी, लेकिन यही पैसा किसी व्यक्ति के खाते में जमा होगा तो वो जानकारी उनके रेडार पर होगी। अब ये कैसा विरोधाभास है कि आप यदि अपने खाते में 2-3 लाख रुपए जमा करें तो इनकम टैक्स अधिकारियों की नजर में आ जाएं, और वही राशि किसी राजनीतिक दल के खाते में जमा हो तो उनसे कोई पूछे तक नहीं। यही समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से बात की।
भारत में जो चुनाव लड़ने वाले दल हैं, जो रजिस्टर होते हैं निर्वाचन आयोग में, उनकी जो फंडिंग है, उनके जो खर्च के ब्यौरे हैं, वो आम तौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ एक प्रावधान बाद के दिनों में जो किए गए निर्वाचन आयोग की पहल पर, और कुछ एनजीओज जिन्होंने कि इस बारे में एफर्ट्स किए, कोर्ट गए, पिटीशन दाखिल किए, उसके आधार पर कुछ एक संशोधन जो किए गए हैं भारत में, वो बहुत नाकाफी हैं। अभी भारत में जो फंडिंग पार्टियों को हो रही है और जिस तरह उनके कोष का, उनके फंड का संचालन होता है, जिस तरह उनका मैनेजमेंट है, उसमें समझ लीजिए कि सिर्फ 25% जो उनका फंडिंग है, उनका जो कोष है, वह लोगों को दिखाई देता है। जो 75% है वो बिल्कुल अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, जो वो पैसा देते हैं, एक लिमिट है 20,000, अब उसमें तो कोई कितना भी दे रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। ऊपर जो लेते हैं उसका भी, वो कहां से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, क्योंकि उनके फंडिंग को, कोई भी उनके अकाउंट को कभी सार्वजनिक नहीं होता भारत में। निर्वाचन आयोग अपने अकाउंटेंट से उसकी जांच ही नहीं करा सकता, यह भी अधिकार नहीं है निर्वाचन आयोग को। जो कंप्लेन होता है उसमें निर्वाचन आयोग अधिक से अधिक उनसे लेखा मांग सकता है, जांच नहीं बैठा सकता।
लेकिन एक ऐसे समय में जब भारत सरकार ने नोटबंदी कर दी, 1,500 के पुराने नोट बंद कर दिए, ये कहकर कि साहब काले धन पर अंकुश लगाएंगे, काले धन की अर्थव्यवस्था को बंद कर देंगे, ऐसे में जब पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी छूट मिली हुई है फंडिंग को लेकर, ये अपने आप में विरोधाभास नहीं लगता?
अभी तक ये कहा जा रहा था कि साहब कुछ जो दल जो सरकार का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके बोरे के बोरे जो पैसे रखे थे वो सब खराब हो गए। तो सवाल यह है कि अब जब आपने ये कहा कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, टैक्स नहीं लगेगा, अच्छा जाहिर है टैक्स नहीं लगता, राजनीतिक दलों को टैक्स से छूट है एक तरह से काफी हद तक, तो अब सवाल इस बात का है कि वो अपना 1,000 करोड़ जमा करें, 100 करोड़ जमा करें, फ्री कर दिया। आम आदमी के लिए फ्री नहीं है, किसी भी मनुष्य के लिए भारत में फ्री नहीं है ये, लेकिन आपने राजनीतिक दलों को फ्री कर दिया। मेरा सवाल है कि भाई अगर हम जानते हैं कि भारत में ब्लैक मनी, जिसके नाम पर ये नोटबंदी आई है, उसको खत्म करने, ये करप्शन को खत्म करने के नाम पर आई है, तो मेरा ये कहना है कि आपने राजनीतिक दलों की फंडिंग को कहीं से भी नोटबंदी से प्रभावित नहीं किया है, तो ऐसे में नोटबंदी का पूरा फैसला इस देश के आम आदमी, किसान, मजदूर, लोअर मिडिल क्लास, नौकरी पेशा आदमी, इन्हीं पर केवल केंद्रित है, निशाने पर यही है। राजनीतिक दल तो मालामाल पहले से हैं और उनको और आपने सुविधाएं दी हैं कि उनका कोई भी बाल बांका नहीं हो सके।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। इस हफ्ते भारत और पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता मिली, ये बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद।
पहले बात पाकिस्तान की। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए चरमपंथी हमले में 140 से ज्यादा लोगों के मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे और उनके टीचर शामिल थे। इसकी दूसरी बरसी पर पूरे पाकिस्तान में कार्यक्रम आयोजित किए गए और मारे गए बच्चों को याद किया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, जबकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के सारे अखबारों ने इसे पहली खबर बनाई है। नवाज शरीफ के हवाले से अखबार जंग लिखता है कि नन्हे मुजाहिदों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों पर रहम नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ ने आगे कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नेटवर्क को लगभग खत्म कर दिया है। पेशावर में सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा कि जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह शांति की जगह नहीं बनाएंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। रोजनामा खबरें लिखता है, बच्चों का खून हम पर कर्ज है, बदला लेकर रहेंगे। इसी दौरान भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से फायरिंग जारी है। कई अखबारों ने इन दोनों खबरों को जोड़कर सुर्खी लगाई है। रोजनामा दुनिया लिखता है, पेशावर हादसे की बरसी पर भारत की भड़काऊ कार्रवाई। अखबार लिखता है कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले की दूसरी बरसी के दिन भारत ने फिर पाकिस्तानी बच्चों पर वार किया है। अखबार के अनुसार भारत ने LOC पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नुकियाल सेक्टर में बच्चों के स्कूल वैन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वैन ड्राइवर की मौत हो गई और 8 बच्चे घायल हो गए हैं। रोजनामा खबरें ने लिखा है कि भारत इंसानियत भूल गया है और अब वो स्कूली बच्चों के वैन पर फायरिंग कर रहा है। भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी पाकिस्तानी अखबारों में छाया रहा, जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। रोजनामा खबरें ने सुर्खी लगाई है, भारत की गीदड़ भभकी, राजनाथ सिंह होश खो बैठे हैं। भारत से छपने वाले अखबारों की बात करें तो नोटबंदी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में हुए हंगामे ही सबसे ज्यादा छाए रहे। सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया और इस दौरान शायद ही कोई खास काम हो सका। रोजनामा इनकलाब लिखता है, शीतकालीन सत्र मोदी सरकार की हठधर्मी की नजर। अखबार लिखता है कि नोटबंदी पर सरकार की हठधर्मी की वजह से पूरा सत्र हंगामों और विरोध प्रदर्शनों की नजर हो गया। रोजनामा सहारा ने लिखा है कि 50-50 स्कीम के तहत सरकार ने काले धन को सफेद करने का एक और मौका दिया है, जो कि 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगा।
भारत और पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की समीक्षा कर रहे थे इकबाल अहमद। आज हम आपको मिलवा रहे हैं बिहार की कुछ ऐसी महिलाओं से जो मिसाल बनकर सामने आई हैं। ये महिलाएं नारी सरगम महिला गुंजन नाम का एक बैंड चलाती हैं, जो कि बिहार का इकलौता महिला बैंड है। इस बैंड के सदस्यों से बात की BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने।
लोग बजाने के लिए जब निकले घर से इतना खराब लगता था, दम मतलब खोल के नहीं, हम लोग इतना शर्म लगता है लगता था घरे, लेकिन अब एक बार दो बार तीन बार लेकिन फिर भी हर जगह गए ना तो दम अब खोल के बजाते हैं कि अब कोई नहीं डर नहीं भय,
पूरी इज्जत मिलती है,
बहुत इज्जत मान सम्मान इतना मिलता है कि हम घर पर जाके कहते हैं कि वाह इतना आप लोग, हम लोग के बचिया भी नहीं उतना थी, पति भी नहीं, ससुर भी नहीं, लेकिन ज्यादा मतलब निकल जाते हैं घर से तो हम लोग के मान सम्मान इतना इज्जत भाव प्रतिष्ठा से बहुत मिलता है।
और घर से बाहर आप इसलिए निकलते हैं क्योंकि आप लोग शादी में भी ड्रम बजाते हैं, कार्यक्रम में ड्रम बजाते हैं,
शादी विवाह में सब में एकदम दूल्हा के हम लोग शादी कराते हैं, भेजाते हैं घर से ले आते हैं, मतलब उस सब हर जगह।
तो शादी में तो जैसे रात रात भर जाना पड़ता है,
रात अब तो नियम हो गया है कि मतलब 6 से 10 बजे तक ना, तो वही मतलब फिर रात में हम लोग का घर चल जाते हैं।
अच्छा चित्रलेखा जी, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी उम्र है कि आप सबसे सीनियर मेंबर हैं, तो आपने जब कहा कि आप ड्रम बजाना सीखेंगी तो आपके बच्चों ने क्या कहा?
सभी लोग महिला बजाने लगा तो हमको मन एकदम से तड़फड़ करे लगा कि हम सीखेंगे, तो ये सब बोला महिला कि तुम कहे के लिए बजाएंगे, तुम बूढ़े है आप बजाएंगे, हम कहे कि नहीं हमको बजाएंगे, हम सीखेंगे।
क्या बात है, आप कितनी औरतें हैं बैंड में?
हम लोग अभी 15 महिला से पहले सीख रहे थे, अब हम लोग 10 महिला अभी पूरा अच्छा बजाते हैं।
अच्छा, तो जैसे 10 महिला जब साथ आई तो बड़ा उसमें भी जोश आया होगा कि
हम जोश 10 दिन पहले दीदी फोन कर दिए ना, तो हम लोग तो दम उमंग हो गया कि अरे बाप दम दिल्ली जाना है तो जाना है।
अच्छा, हाँ। तो पहली बार दिल्ली आई?
हाँ पहली बार आए दिल्ली।
पर बिहार में खूब जाती हैं, इधर उधर घूमती
हैं? बहुत एकदम, सब हर जगह बजाए हम लोग।
अच्छा, तो इसे बजाने से एक तो घूमने को मिला, दिल्ली आने को मिला, जगह जगह देखने को मिला, हाँ। पैसा भी कमाने को मिला?
हाँ, पैसा हम लोग का मिलता है,
पैसा सब देता है, लोग खुशी से बजाते हैं हम लोग ना, तो बहुत बहुत पैसा मतलब देता है, बख्शीश में देता है,
4,000 रुपया मिलता है, 5,000-5,000 रुपया बख्शीश होता है खाली।
क्या अब आप अपने आदमी से ज्यादा कमाने लगी हैं?
हम पति से ज्यादा हम लोग कमाने लगे हैं। हाँ, अपना पति से ज्यादा कमाते हैं, अपना मनमानी खर्चा करते हैं, अच्छा कपड़ा लेते हैं, अच्छा लड़कन के पढ़ाइयों में भी खर्चा करते हैं, किताब भी ला के देते हैं अपना बच्चे बच्ची को।
नहीं है कि हमको 10 चाहिए 20 चाहिए, कोई चीज हर समय में हम लोग का पैसा रहता है 1,500, दम जो चीज मन करता है उस चीज लेते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, अब कोई के किसी से डर नहीं।
क्या बात है, और आप सबको एक समाज सेवी हैं बिहार में, उनकी मदद से ये काम करने को मिला। जब पहली बार उन्होंने आपको कहा कि आप लोग बैंड बजाइए, तब पहली चीज क्या आई थी मन में?
समाज सेवा करने वाली दीदी है, हमारे पूरे राज्य में काम करती हैं, सुधा बरगीत जी, और उनकी तहत आज हम लोग ड्रम बजाने के लिए सीखे हैं। आज हम उनकी तहत आज हम रुपया कमा रहे हैं।
जब उन्होंने पहली बार ये कहा कि आप लोग ड्रम बजाएं, तो तब एकदम से क्या बोला उनको?
हम तो बोले,
पहले तो डर गए थे कि बजेगा,
हम पहले आपस में हम लोग बोले कि दीदी कौन काम बता रहे हैं, हम लोग को शर्म पहले लगता था कि देखिए ना पति वाला काम आई लोग, मैंने पुरुष के काम आई लोग, हम लोग को दीदी बता रहे हैं, हम लोग से होगा? हम लोग अपना राय लिए अपन आपस में कि हम लोग सीखेंगे, ताकि हाँ सीखा लगता था कि हम लोग ये सीखबे नहीं करेंगे,
ताल नहीं पकड़ता था,
नहीं कोई भी नहीं ताल पकड़ता था, दाल भात सब्जी कर करके हमारे सर सिखाते थे, रोटी चावल बोल बोल के हमारे सर सिखाते थे, हाथ धर के सिखाते थे।
क्या बात है, बहुत सारे लोगों को आज आपने प्रेरणा दे दी, बीबीसी हिंदी के सभी श्रोताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
नारी सरगम महिला गुंजन बैंड का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। अपने बोल्ड ट्रेलर से मशहूर हुई फिल्म वजह तुम हो इस हफ्ते रिलीज हुई है। कैसी है ये फिल्म बता रहे हैं वैभव दीवान और फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी।
बीबीसी, दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरी हर राह की मंजिल भी तुम हो, अब और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मेरे जीने की वजह तुम हो।
वजह तुम हो फिल्म का ट्रेलर इतना हॉट था कि शायद फिल्म बनाने वालों को लगा कि यार इस फिल्म को सर्दी में ही लॉन्च करते हैं, थोड़ी गर्मी पड़ जाएगी लोगों को। रातों रात इस फिल्म के ट्रेलर को मिलियंस ऑफ हिट मिल गए। हिट स्टोरी 2 और 3 जैसी नॉन सो फैमिली फिल्म बनाने वाले विशाल पांड्या की फिल्म है वजह तुम हो। इसको इरोटिक थ्रिलर का टैग मिला है। फिल्म में सस्पेंस और सीन दोनों भरपूर है। फिल्म में बिग बॉस वाली, आई होप आपने सही सुना, बिग बॉस वाली सना खान है। टीवी से निकले गुरमीत चौधरी है। 3 इडियट्स वाले शर्मन जोशी हैं और हॉरर फिल्म के मेल बिपाशा बासु रजनीश दुग्गल भी हैं।
तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे वजह तुम हो।
फिल्म देखकर आए अर्णब बनर्जी, बीबीसी फिल्म क्रिटिक हैं, आते हैं हर हफ्ते फिल्में देखकर, इनका काम ही है ये फिल्में देखना। अर्णब, कैसी लगी आपको वजह तुम हो?
देखिए, कहानी तो फिल्म की बुरी नहीं है, एक मर्डर मिस्ट्री है और उसमें एक के बाद एक कई सारे मर्डर्स होते हैं, लेकिन जो बचकानी चीजें दिखाई गई हैं उससे देख के कभी कभी हंसी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म ना चाहते हुए भी फनी बन जाती है। ऐसा मिस्ट्री में होना नहीं चाहिए, सस्पेंस में ऐसा होना नहीं चाहिए, आप टेंस होने चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो वो इस फिल्म में नजर नहीं आती है।
अच्छा अर्णव, फिल्म की स्टार कास्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, कितने काम के लगे आपको एक्टर्स?
एक्टर्स अगर थोड़े से अच्छे होते यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा। इतनी वीक स्क्रिप्ट के साथ बहुत ही ऑर्डिनरी एक्टर्स अगर लेंगे आप तो फिल्म धसी की धसी रह जाएगी।
ओके, फाइनली नंबर कितने दोगे आप फिल्म को?
वजह तुम हो को मैं 5 में से 1 दूंगा।
लखनऊ में आज पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और बेल्जियम के बीच होगा। उत्साह से भरी भारत की अंडर 21 हॉकी खिलाड़ियों की टीम 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती थी और साल 1997 में फाइनल में पहुंचकर दूसरे नंबर पर आई थी। इस बार खिलाड़ियों के हौसले तो बुलंद हैं ही, भारतीय हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह को भी अपनी टीम और उसकी तैयारियों पर पूरा भरोसा है। उनसे बात की बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार ने।
ये जो इंडिया और बेल्जियम का मैच होगा, मेरे ख्याल से वो कांटे का होगा, जिसमें दोनों टीमें बहुत जानी जाती है अटैकिंग हॉकी के लिए। लास्ट चार साल से बेल्जियम की सीनियर एंड जूनियर टीम अच्छी खेल रही है, तो मेरे ख्याल से जैसे हम लोग खेल रहे हैं और एक खुली हॉकी एंड अटैकिंग हॉकी, बेल्जियम भी उसी के लिए मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से दर्शकों को और सारे हॉकी प्रेमियों को एक अच्छा हॉकी काउंटर और बॉल पोजीशन देखने को मिलेगा। कि ये जो टीम है ये मैंने तैयार की है, सिर्फ हॉकी की तैयारी नहीं की, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ हॉकी एक स्किल है जिसको आपको खेलना है, लेकिन उसके बाद बाकी एलिमेंट्स हैं 23-24 जो कि आपको उसको भी तैयार करना है, जैसे मेंटली फिजिकली कब कैसे आप रणनीति चेंज करना है, उसको एडेप्टेशन, उन लड़कों की सोच, उस लड़कों की समझ हॉकी की, और प्लस आपको हॉकी खेलनी है अपने लय में। आप अगर अपोजिशन की लय में खेलेंगे तो आपका हार निश्चित है
सर। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन वाकई में अच्छा भी रहा है, जो आप कह रहे हैं कि सबको एक टीम के तौर पे गूथा है, क्योंकि कुछ लोग जैसे आपने हरमनप्रीत सिंह हो या कल के मैच जो सेमीफाइनल मैच में गोलकीपर की भूमिका वो ही स्टार बन के उभरे, तो चार पांच खिलाड़ियों पे जिनपे नजर रहेंगी जो आपकी योजना का खास हिस्सा है उनके बारे में बताना चाहेंगे?
अच्छा होता है जब मीडिया या कोई किसी प्लेयर को तारीफ करता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए अगर कोई गोल मार रहा है तो उस गोल बॉल को पास करने के लिए कोई प्लेयर ने पास भी दिया हो, तो मेरे लिए वो प्लेयर इम्पोर्टेंट होता है। विकास भैया ने कल बहुत बेहतरीन गोलकीपिंग की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो वो जो चार प्लेंटी शूट आउट लेने वाले थे उन्होंने उस चार को गोल में तब्दीली की। अगर विकास भैया रोकते जाए और हमारे मारने वाले फेल होते जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वहाँ उस डिपार्टमेंट में फेल। तो मेरे हिसाब से ये जो टीम की सबसे अच्छी खूबी है कि हम एक इंडिविजुअल पे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट या उसको तजव्वुर नहीं देते, हम पूरी टीम को देते हैं, तो इसमें हर किसी का कहीं ना कहीं योगदान है, इसीलिए ये टीम आज वर्ल्ड कप खेल रही है फाइनल।
ये थे भारतीय हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह, और अब सुनिए बाकी की खेल खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल सबकी नजरें दिल्ली में बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 7 मुकाबले जीतने वाले भारत के विजेंद्र सिंह और तंजानिया के फ्रांसिस चेका के बीच हुए मुकाबले पर थी। विजेंद्र सिंह अपना WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब बचाने के लिए मुक्केबाजी रिंग में थे। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में विजेंद्र के शोर के बीच विजेंद्र सिंह ने पूर्व सुपर मिडिलवेट विश्व चैंपियन फ्रांसिस चेका को जमने से पहले ही उखाड़ फेंका। उधर चेन्नई में खेले जा रहे 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत की, और जब कल का खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रन था। कल के दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कहा,
2 ही दिन हुए, अभी 3 दिन और भी बाकी हैं। हम लोग लॉन्ग सेशन खेलते हैं और रन बनाते हैं ज्यादा, उनसे तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट इनिंग में उनको आउट करें और विकेट क्या बिहेव करता है, अगर तीसरे दिन के बाद अगर टर्न होता है विकेट तो हमें लगता है कि मैच में इंटरेस्ट अभी भी बाकी है।
वहीं ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन जीत के लिए 490 रनों की तलाश में पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 70 रन पर 2 विकेट खो दिए थे।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीका के मुताबिक चीन उसका समुद्री ड्रोन लौटाने के लिए सहमत हो गया है। चीन ने गुरुवार को दक्षिणी चीन सागर में अमरीकी ड्रोन को जब्त कर लिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश के सबसे बड़े नोट को बंद करने का फैसला जनवरी तक के लिए टाल दिया है। यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड की सरकार से संविधान का सम्मान करने को कहा है। सीरिया से मिली खबरों के मुताबिक पूर्वी अलेपो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नए समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।